ओम शांति। आज हमारे बीच में सादा जीवन उच्च विचार को सार्थक करने वाली गंभीर जैसे बोल वैसे कर्म से दर्शन कराने वाली ईमानदार चेहरे पर साधना का तेज सत्य परमात्मा के सत्य पर चलने वाले परम आदरणीय परम श्रद्धेय जयंती दीदी जी, सभा की हर आत्मा अभिनंदन करती है आपका। स्वागत है दीदी, नमन है दीदी। बाल्यकाल का ये अलौकिक ध्रुव तारा है जिनमें सभी दादियों का प्रकाश है। अंतरराष्ट्रीय सेवाओं में आपकी अहम भूमिका रही है। हिमगिरी जैसा दृष्टिकोण है आपका, मधु जैसा मिठास का व्यक्तित्व है आपका, सागर जैसा चिंतन है आपका, बुद्धेश्वर का वास है आपकी बुद्धि में, माँ सरस्वती का वरदान है आपकी वाणी में, ब्रह्मा की पालना और दादियों की परवरिश में आप वो फरिश्ता हैं जिससे वैराग्य की चाबी हमें स्वतः ही मिल जाती है। वैराग्य की चाबी। आप मुख्यालय की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका हैं एवं देश और विदेश की सेवा केंद्रों के आप डायरेक्टर हैं। दीदी जी, चार पंक्तियां समर्पित करती हूँ। सरल व्यक्तित्व में हमको खुदाई नूर दिखता है। सरल व्यक्तित्व में हमको खुदाई नूर दिखता है। मधुर वाणी अगर सुन लें तो सुकून भरपूर मिलता है। फरिश्ते हैं आप, फरिश्ते हैं कभी हमने सुना था, ये सच निकला। हमें तो आप में दीदी जी प्रभु का नूर दिखता है, प्रभु का नूर दिखता है। तो अभी हम दीदी जी से सुनेंगे एकाग्रता द्वारा ज्वालामुखी याद। आदरणीय दीदी जी।
ओम शांति। बहुत ही सुंदर टॉपिक है। बाबा का मिलन मनाने के लिए आएंगे और हम तैयारी कर रहे हैं, बाबा का आह्वान कर रहे हैं और उस बीच में यही टॉपिक कि किस तरह से हम अपने बुद्धि को एकाग्र कर सके ताकि हमारी ज्वालामुखी योग रहे। तो पहले मेरा प्रश्न है कि ज्वालामुखी योग को हम किस योग को कहते हैं? एक तरफ हम कई बार कहते हैं योग अग्नि। तो जब योग अग्नि का रूप लेती है, प्यार का रूप इतना जबरदस्त है जो वो अग्नि के समान हमारे सारे ही पाप नाश कर देते, सारी ही जो एलॉय हमने अपने में जमा करके कठी करके रखी है 2,500 वर्षों से, वो सारे एलॉय पिघल कर निकल जाती और हम बिल्कुल सच्चा प्योर सतो प्रधान सोना बन जाते। तो उसी को ही कहेंगे ज्वालामुखी योग। इतनी लाइट, इतनी माइट जो सब तरफ को फैलती है। तो हमारा योग न केवल हमारे लिए परंतु हमारा योग विश्व को भी मदद करता। जब हम दादी के साथ ट्रैवलिंग करती थी, दादी जानकी के साथ, तो दादी को साइट सीइंग टूरिज्म तो कभी पसंद ही नहीं था और न समय होता था। एक स्थान पर पहुंचो, सेवाएं शुरू हो गई, तो फिर तो कहाँ भी जाना आना प्रोग्राम के सिवाय और कुछ होता ही नहीं था। परंतु जब साउथ अफ्रीका में थे एक बार, दादी को उन्होंने बताया कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर पहाड़ों से उन्होंने खोद 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 करके सोना निकला है और वो सोना फिर वो पिघला करके उसको बिल्कुल प्योर सोना बनाते हैं। तो दादी ने कहा मुझे ले चलो, मुझे वो स्थान देखना है। दादी लौकिक में ज्वेलर की बेटी थी तो उनको सोना का ज्वेल्स का जानकारी थी, कभी शौक नहीं था पहनने का। और ही जब बाप उसको कुछ देते थे, वो जिन कुमारियों को उसको मालूम था कि उनके पास इतना धन नहीं है जो वो इस चीज़ें इस तरह की चीज़ें ले सके, तो वो बाप से ले लेती थी और फिर ऐसी कुमारियों को देती थी जिन्हों को उन चीज़ों का शौक था। दादी को बचपन से ही पहनने का इस तरह से शौक नहीं था, तो दादी को इंटरेस्ट था कि मैं देखूं। तो बहुत नीचे 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 लिफ्ट बनी हुई थी जिसमें हम नीचे गए, टनल्स थे, और वहाँ पर दिखाया कि किस तरह से कहाँ से वो सोना खोद खोद करके निकालते हैं, फिर वापस ऊपर लेके आए। और वहाँ पर उन्होंने दिखाया कि किस तेज तेज टेम्परेचर पर सोना पिघलता है और जो एलॉय है वो निकल जाता और सच्चा सोना लिक्विड फॉर्म में रह जाता, और वो लिक्विड सोना फिर छोटी छोटी कुपरियाँ बनी थी उसमें फिल होकर के वो बनते गए। तो दादी का कहना था कि देखो, स्थूल में भी सच्चे सोने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तो बाबा हमें सच्चा सोना बना रहे हैं, तो बाबा को हमारे ऊपर कितनी मेहनत करनी होती है ताकि हम फिर से सच्चा सोना बने। इतना ध्यान देना होता है कि जैसे लौकिक में टेम्परेचर बिल्कुल राइट होना चाहिए, राइट टेम्परेचर नहीं है तो सोना पिघलेगा नहीं और वो एलॉय निकलेंगी नहीं। तो इतना ध्यान सोनार को देना होता जो बिल्कुल हर बात बिल्कुल सही हो। तो बाबा भी एक एक बच्चे के ऊपर इतना ध्यान रखते हैं, इतना प्यार से, इतना समय तक ध्यान रखते, संभालते, आगे बढ़ाते ताकि बच्चों को कोई तकलीफ न हो, परंतु फिर भी सत्वप्रधान स्थिति सच्चा सोना बन जाए। तो ज्वालामुखी योग वो योग जिससे सत्वप्रधानता फिर से वो वापस लौटे, तो उसमें भी कैसे पता चले कि आत्मा सत्वप्रधान है? पहले मैं रिजल्ट क्या होती है इस योग अगेन द्वारा वो बता रही हूँ, फिर कैसे वो करे वो भी हम देखेंगे। परंतु सत्वप्रधान स्थिति वो स्थिति जिसमें कोई प्रकार का लेप छेप आत्मा के ऊपर नहीं पड़ता। सोना इतना वैल्यूबल क्यों है? क्योंकि पानी में भी भिगो, हवा में भी रखो, कुछ उसके ऊपर लेप छेप नहीं, बस सूख जाएगा अपने आप, वो सोना चमकता रहेगा। चांदी, चांदी के ऊपर असर आ जाएगा, परंतु फिर भी उसको थोड़ा पॉलिश करो ठीक बन जाती। कॉपर, कॉपर तो ऐसा है जो पानी का, हवा का ऐसा असर होता है जो ऑक्सीडाइजेशन हो जाती और रंग ही बदलकर ग्रीन हो जाता, बिल्कुल रूपरेखा ही बदल जाती। और कॉपर को हाथ लगाने में तो कोई तकलीफ नहीं, कॉपर जब रस्ट चढ़ जाता है, हरियाली आ जाती है उसमें, हाथ लगाने का मन ही नहीं करेगा, पता नहीं हमको कुछ लग न जाए। और आयन, जब लोहा है तो लोहा पर तो इतना उसका लेप छेप आ जाता है पानी का, हवा का, जो बिल्कुल उसमें रस्ट ऐसी आ जाती जो बिल्कुल पॉइजन। तो कभी भी पॉइजन को तो हाथ लगाएंगे ही नहीं। परंतु आप सोचो कि सत्युग के संबंध में जब आत्मा सत्वप्रधान संबंध में आना, प्रेम, प्यार, रिस्पेक्ट, खुशी, सब कुछ, परंतु कोई हिसाब किताब नहीं बना, बिल्कुल आत्मा संबंध में आए, लेन देन किया खुशी का और बस, और आगे चलती चली। और फिर द्वापर तक जब पहुंचते हैं तब तक हाँ संबंध में कुछ फर्क हो गया, रंगी बदल गया, संबंध जो प्रेम संपन्न था, खुशी का लेन देन था, दुख का संबंध तो क्या दुख का बंधन कहेंगे। और कलयुग में आप सोचो कि जितने नजदीक संबंध है उतने ही उन संबंधों में दुख का अनुभव होता। बाहर वालों के साथ कोई इस तरह का दुख का संबंध नहीं होता, घर वालों के साथ ही लेन देन में ही इतना परिवर्तन हो जाता। जो जिनों के साथ समीप से समीप संबंध है, जिसमें इतना प्यार और खुशी और लेन देन बिल्कुल शुभ भावना की हो, वो ही खत्म हो गई है। और उसमें कभी हिंसा भी आ जाती, लोभ और मोह और अहंकार तो है ही। तो कलयुग से, दुख के जंजीरों से छुड़ाकर फिर हमें सुख के संबंध में ले जाने के लिए बाबा हमें योग सिखाते हैं। इस सारा ही रस्ट निकल जाए, एलॉय निकल जाए, जो किसी भी संबंध में हम किसको दुख न देवे। बाबा का ये विशेष मंत्र है, न दुख दो न दुख लो। जब आत्मा कलयुग में है तो ऐसी उसकी स्थिति है जो हम दुख देने नहीं चाहते हैं, हम लेने नहीं चाहते हैं, परंतु ऑटोमेटिकली वो ही चलता। तो इतनी तेज योग अग्नि चाहिए, ज्वालामुखी योग चाहिए, जिससे आत्मा फिर से उस मीठे संबंध का अनुभव करे। हमारे में परिवर्तन होगा तो संबंधों में ऑटोमेटिकली परिवर्तन होगा, फिर दुख का लेन देन नहीं होगा, हम न दुख लेंगे और न दुख देंगे। तो इसी से ही हमें पता चलेगा कि हम कहाँ तक अपने सत्वप्रधान स्थिति तक पहुँचे हैं। यदि थोड़ा सा भी अभी तक दुख हम लेते हैं तो किसी न किसी प्रकार से दुख हम देंगे जरूर। चाहे आप मुख से कुछ ना भी बोलो, आंखों में जो तेज आती है या चेहरे पर वो मुस्कान खत्म हो जाती, तो दुख देना दुख लेना वो तो कलयुग का हिसाब किताब बनता ही जाता है, बनता ही जाता है। और जब हम सत्वप्रधान स्थिति में हैं तो सत्युग बाद में आएगा, परंतु सत्युग की स्थिति हमें अब बनानी है। तो आप ये अपने आप को देख सकते कि न दुख लेना और फिर दुख देना, ये बिल्कुल समाप्त। और फिर साथ साथ सोना इतना मैल्युएबल होता, बिल्कुल हल्का, उसको हाथों से ही मोल्ड कर सकते। जिसमें एलॉय होंगी वो तो इतना सख्त होगा जो आप उसको मोल्ड नहीं कर पाएंगे। तो सत्वप्रधान आत्मा बिल्कुल ऐसे हल्की जो हर बात में फ्लेक्सिबल, हर बात में एडजस्ट कर सकती, अपने नियमों में जो अपने प्रिंसिपल्स है, जो अपनी सभ्यता है, मर्यादा है, उसमें नहीं हम मोल्ड होंगे, उसमें तो बिल्कुल पक्के जो हमारी स्थिति होनी चाहिए वो बिल्कुल मजबूत। परंतु जब चॉइस की बात आती है, आपकी चॉइस ये है, हमारी चॉइस ये है, तो हम आपकी चॉइस को जल्दी स्वीकार कर लेंगे, तो उसमें कभी भी टक्कर नहीं होगा, दुख का लेन देन समाप्त हो गया। हम फ्लेक्सिबल बने तो फिर दुख समाप्त। और तीसरा, फिर इतना लाइट। सत्युग में तो जवाबदारी तो शब्द होगा, परंतु कोई उसमें वजन की बात नहीं होगी कि हम कोई बर्डन फील करें। हाँ, माता पिता, फ्रेंड्स, टीचर सब होंगे, परंतु जिम्मेवारी बहुत हल्के फुल्के रीति से, फूलों जैसे संबंध है तो फिर कोई उसमें बोझ नहीं। तो वो स्थिति हमारी आज, परंतु जिम्मेवारी बाबा की सेवा की, परंतु वो तो करण करावन हार है। तो हम बहुत हल्का होकर के कर रही हैं, एक्यूरेट भी कर रही हैं, परंतु बोझ नहीं महसूस होता, हम बिल्कुल हल्के। तो ये सब कुछ कुछ मैंने निशानियां बताई है कि किस तरह से हमारे संस्कारों में परिवर्तन आता, और खुद अपने आप को देख सकते कि कहाँ तक हमारे संस्कार क्या कलयुग के हैं या द्वापर के हैं या त्रेता के पहुंचे या सत्युग तक पहुंचे। यदि मन में कुछ संघर्ष चल रहा है अभी तक, कोई न कोई बात के कारण मन ये कहता और विवेक कुछ और कहता, तो वो संघर्ष भी सत्व प्रधानता की निशानी नहीं, वो है सत्व। जबकि तीर कमान दिखाया गया है चंद्रवंशी की निशानी, तो तीर कमान अथवा कुछ न कुछ युद्ध, तो अपने आप के साथ वो युद्ध। तो हम देख सकते हैं कि हमें अब कितनी दूरी है उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए, और फिर योग स्थिति को हम उस अनुसार आगे बढ़ाते जाएं, ताकि संसार की हालतें तो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, परंतु समय से पहले हम अपनी स्थिति को जो हम चाहते हैं वो हम बना सकें। उसमें भी फिर हम चाहते हैं कि ऐसे हमारा योग हो जिसको लगन के अगन, योग अगन कहा जाए, बहुत तेज सारी एलॉय निकली हुई हो। तो उसमें मैंने देखा है कि एकाग्रता भी तब आती जबकि बाबा के साथ अटूट स्नेह और बिल्कुल अचल निश्चय। किसी भी बात में हमारा निश्चय डावांडोल न हो। और बात शुरू कहाँ से होती? ज्ञान को समझा, ज्ञान अच्छा लगा, ज्ञान का अभ्यास किया, उसकी रिजल्ट देखी, खुद में संस्कारों का परिवर्तन भी देखा, परंतु फिर ध्यान चला गया बाहर, खुद पर ध्यान देने के बजाय पर दर्शन पर चिंतन में हम चले गए। उसने ये किया, उसको नहीं करना चाहिए था, ऐसे क्यों हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये जो फालतू संकल्प चलते हैं, आप सोचो निश्चय हमारा हिलने लगा तो हमारा योग कैसे लग सकेगा? योग भी बहुत कभी लगेगा कभी नहीं लगेगा, जैसे बिजली खेल करती, अभी आई अभी गई, अभी आई अभी गई, इसी तरह से योग लगा फिर कट हो गया। तो जो योग अगेन होनी चाहिए, आप सोचो कि आप कुछ चीज पका रहे हो, अभी आग आ रही है, गैस आ रहा है, फिर गैस 2 सेकंड के लिए 3 सेकंड के लिए बंद हो जाए, सब कुछ ठंडा हो गया, फिर आग आ जाए, फिर उसको गर्म करने के लिए उस टेम्परेचर पर लाने के लिए फिर से टाइम लगेगा। तो यदि ज्वेलर होता, ज्वेलर ये बहुत ध्यान रखता कि आग का जो टेम्परेचर है वो नीचे ऊपर न हो, स्टेडी हो, बिल्कुल उसमें कुछ हलचल न हो, तभी एलॉय सोने से निकल सकती। इसी तरह से हमें अपने निश्चय को बहुत मजबूत रखना है, स्व का दर्शन करते, स्व का चिंतन करते। एक उंगली यहाँ है तो देखो 3 उंगली स्व के तरफ इशारा कर रही है। तो जितना जितना हम स्व के चिंतन में रहते हैं, जितना हम स्व का दर्शन करते हैं, उतना हमारा निश्चय बढ़ता जाता। नहीं तो शुरू होता है मनुष्यों के लिए कुछ न कुछ चिंतन, फिर हो जाता है चिंतन बड़ों के लिए, वो लोग क्यों इन्हों को सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों इन्हों को मदद कर रहे हैं, उन्हों को क्यों नहीं कुछ कहते हैं। और फिर यहाँ तक भी बात मैंने देखी है कि कि उंगली बाबा तक भी पहुंच जाती, बाबा इनको क्यों नहीं ठीक करता। बाबा सब बातें क्लियर हमें बता रही हैं, परंतु फिर हम बाबा तक भी उंगली उठा लेते। तो हमें एक तो अपने निश्चय को बहुत मजबूत रखना है, और मेन बात उसमें स्व पर ध्यान देवे, और हाँ फॉलो फादर, बाबा को देखें, मम्मा को देखें, और कहीं तरफ मेरी नजर न जाए। और यदि हम देखते हैं औरों को तो उनों के गुणों को देखें, न कि और कोई बात देखें। आप सोचो जो भी बाबा के बच्चे हैं, जो निश्चय के आधार से अभी पुरुषार्थ कर रही हैं, योग लगा रही हैं, बाबा को पहचाना है, तो बाबा कहते हैं कि लास्ट वाली आत्मा भी विजयी आत्मा जरूर बनेंगी, अंत में जरूर घर चलेंगे मुक्ति में, और फिर जीवन मुक्ति में भी आएंगे। और दूसरा, मम्मा ये कहा करती थी कि जिनों के लिए आप आज कुछ भी कह रहे हो, आप भूल गए हो कि कौन सी आत्माएं हैं। ये वो ही देव आत्माएं हैं जिनों की हमने आधा कल्प पूजा की है, वही पूजनीय आत्माएं हैं, और हम भूल जाते हैं इस बात को, और फिर साधारण बातों पर हमारा ध्यान चला जाता। क्योंकि 2500 वर्ष की आदत है नेगेटिव सोचना, तो हम औरों के प्रति बहुत जल्दी नेगेटिव बात देख लेते हैं, गुणों को नहीं देखते हैं। एक बार मुझे याद आता कि एक बहन पहले तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करती थी, ये लंदन की बात है, और फिर उसका ध्यान अपने करियर, अपनी जॉब को आगे बढ़ाने के लिए चला गया। तो ज़्यादा समय फिर काम भी करे, स्टडी भी करे, पुरुषार्थ भी करे, तो बहुत उसके क्लासेस मिस होते रहे। परंतु फिर उसको संकल्प आया कि मैं मधुबन जाएंगी तो मेरे पुरुषार्थ में मदद मिलेंगी। तो वैसे और सब नियमों को तो पालन कर ही रही थी, और दादी को तो वो स्पिरिचुअल अथॉरिटी थी, जो दादी देख करके फिर डिसीजन ले सकती थी कि हाँ भले तुम मधुबन जाओ, स्पेशल फैसिलिटी। तो वो मधुबन आई, और ट्रांसलेशन की ज़रूरत होती थी तो मैं ट्रांसलेट कर रही थी उसके लिए। तो मुझे इंटरेस्ट था कि बाबा इसको क्या बोलेंगे। ये है अर्ली 80s की बात, जब बाबा पर्सनल मुलाकात करते थे ये ओम शांति भवन में। तो मैंने सोचा शायद बाबा उसको कुछ सावधान करेंगे कि तुमको रोज क्लास में आना चाहिए, कुछ कुछ इस तरह से। बाबा ने उसको क्या बोला, बाबा ने कहा तुम्हारा निश्चय बिल्कुल अटूट रहा है, तुम्हारा प्यार बाबा के साथ बिल्कुल एकाग्र रहा है, जिस कारण से बाबा तुमसे बहुत खुश है और मधुबन में तुमको बुला लिया है। बाबा ने उसकी कुछ कमी, कुछ कमजोरी का वर्णन नहीं किया, बाबा जानते हैं, तो कुछ बाबा को कहने की भी जरूरत नहीं है। परंतु जानते हुए भी बाबा का एक ही लक्ष्य कि मुझे हर बच्चे को ऊंचा उठाना है। तो बाबा उस लक्ष्य से उसको इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, जो हाँ फिर वो बहन आज तक भी बिल्कुल बाबा की बच्ची है, और अभी एजुकेशन से करियर को बहुत आगे बढ़ाती गई, तो फिर उससे सेवाएं भी बहुत होती गई, और आज तक भी उसके जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड है उस आधार पर बहुत सेवाएं हो रही, और वो बिल्कुल बाबा की पक्की बच्ची। तो आप देखो कि बाबा क्या करते, क्या हम बाबा से सीख सकते कि हमें भी ऐसे करना है, किसकी कमी कमजोरी को न देख करके ये भावना हो कि ये आत्मा और आगे बढ़े, इस आत्मा का भी उद्धार हो जाए, इस आत्मा का भी कल्याण हो जाए। तो यदि बाबा से ये बातें हम सीखते हैं तो न केवल बाबा के लिए प्यार परंतु परिवार के लिए भी प्यार। ये सब बातें मैं क्यों सुना रही हूँ, क्योंकि बुद्धि को एकाग्र करने के लिए बाबा का प्यार और हमारी दृष्टि वृत्ति न सिर्फ आधे घंटे के लिए योग के समय परंतु दिन भर हमारी स्थिति जैसे होंगी उस अनुसार हमारा योग होगा। आप लोगों ने खुद अनुभव किया है कि जिस दिन मधुबन में जैसे हैं, दिन भर क्लासेस चल रहे हैं, आपका ज्ञान का मनन चिंतन चल रहा है, संघ बहुत श्रेष्ठ है, तो आपका योग आप कहेंगे मधुबन में बहुत अच्छा लगता है। तो मधुबन में तो चार दिन पांच दिन के लिए आएंगे, सदा तो नहीं बैठ सकते, परंतु मधुबन की स्थिति जिस आधार से बनी है वो आप पॉइंट्स लेकर के देखो कि किस आधार से हमारी स्थिति ऊंची बनी है। प्यार का वाइब्रेशन, शक्तिशाली संग और ज्ञान का मनन चिंतन, इन बातों के कारण। तो क्या हम अपनी बुद्धि की स्थिति अपने स्थान पर रहते कामकाज करते ऐसे नहीं बना के रख सकते? जिस समय हमको फोकस है काम पर, बाबा छुट्टी देते हैं, भल आप उस बात पर फोकस करो। आप नहीं फोकस करेंगे तो एक्यूरेट काम नहीं होगा, तो ये भी कोई बाबा का शान नहीं है। बाबा अपने बच्चों से चाहते हैं कि न सिर्फ योग में वो प्रवीण हो परंतु अपने लौकिक कारोबार को भी बहुत अच्छी तरह से संभालें, क्योंकि वो भी है योग की निशानी। हम कहें कि हम तो योग में बैठे हैं, मस्त है और गड़बड़ होती रहे तो बाबा नहीं मानेगा कि ये कोई योग की निशानी है। आप देखो बाबा इतना बुजुर्ग तो भी बाबा लास्ट तक भी, आपने कहानी तो सुनी है, लास्ट दिन बाबा ने 40 पत्रों का उत्तर दिया और फिर रात्रि को क्लास भी कराया। तो बाबा को, और न सिर्फ इतना तक, बाबा सब तरफ चक्कर लगाया, जहां मकान बन रहे थे वहां भी लास्ट में चक्कर लगा करके डायरेक्शंस दिया। इतना तक जो बाबा भंडारे में भी जाते थे तो देखते थे कि नमक है, चीनी है, कुछ जरूरत तो नहीं है। तो ऐसे नहीं कि बाबा सोचे कि बस मुझे तो आत्माओं का कल्याण करना है, शरीर का कोई भूल सुधबुद भूली हुई हो, नहीं। बाबा साकार दुनिया में हर बात पर बिल्कुल एक्यूरेट हो, सब कुछ ठीक चले उस पर भी ध्यान देते रहें, बच्चों की मदद भी करते रहें और खुद अंतरिक्ष अपनी उन्नति स्व के योग की वो भी करते रहें। सब बातें कठी कठी चलती, कहीं फिर समझते हैं कि यदि हम बस शांत में तपस्या में बैठ जाएं, उससे हम जल्दी कर्मातीत बन जाएंगे, हमारी वो ज्वालामुखी योग की स्थिति हो जाएंगे। और बात क्या होती है, मन को यदि, बुद्धि को यदि हमने ठीक प्रकार से संभाला नहीं है तो एकाग्रता ही नहीं होंगी जिससे हमारी योग की स्थिति ऐसे हो। तो दिन भर हमारा जो कार्य है, दृष्टि है, वृत्ति है, कृति है, उस अनुसार हमने जो स्थिति बनाई है, आप योग में बैठो तो हाँ तुरंत ही बाबा के साथ संबंध और वो योग की ज्वाला रूप वो बहुत जल्दी आपको अनुभव होंगी। तो कहने का मतलब कि जो भी हमें करना है हम करें अवश्य, परंतु किस स्मृति में हमें रहना है। कारोबार है, फोकस करना है, ध्यान देना है, ठीक है, परंतु उसके बाद और उससे पहले दिन भर में 8 घंटे के कारोबार में मुझे लगता है कि शायद मुश्किल से आधा समय या आधा से भी कम समय 4 घंटा ही एक्चुअल फोकस होता, बाकी समय तो अनेक और बातों में जाता। तो जब हम ये ध्यान रखते हैं कि हमारे संकल्प वेस्ट न जाए, नेगेटिविटी तो छोड़ दो, वो तो बाबा का बनने से हमें मालूम ही है, नेगेटिव को हमें बिल्कुल छुट्टी दे देनी है, परंतु फिर व्यर्थ भी न जाए, हमारे संकल्प भी स्मृत रहे, हमारे स्मरण में, हमारे मन में क्या क्या बातें चल रही है वो हम उसको चेक करें और चेंज करें। बाबा का ये बहुत अच्छा मंत्र आया था थोड़ा समय पहले, चेक एंड चेंज, चेक एंड चेंज। तो जब हमारी चेकिंग होती कि किस क्वालिटी का हमारे संकल्प चल रहे हैं, उस अनुसार फिर उसका हम परिवर्तन करके उसको श्रेष्ठ संकल्प बनाते हैं, न सिर्फ पॉजिटिव, बाबा हमारे को पॉजिटिव से भी और ऊंचा लेके जा रहे हैं, बिल्कुल श्रेष्ठ। जब हम श्रेष्ठ संकल्प करते हैं दिन भर, तो जब फिर हम योग में बैठेंगे, मन और बुद्धि को हम एकाग्र कर सकेंगे। जब बुद्धि में इतना ज्ञान है, बुद्धि में बाबा के लिए इतनी प्यार की भावना है, बुद्धि में निश्चय है, तो बुद्धि सहज ही एकाग्र हो सकती। जब मन को बुद्धि इतनी शक्तिशाली है, तो मन को यहां वहां भागने नहीं देती, मन को अच्छी तरह से गाइड करती कि हाँ किस रास्ते से चलना है, और मन में फिर बाबा के साथ बातें करेंगे, पुरानी बातों को छुट्टी दे देंगे। बहुत करके मनुष्य का मन किस तरफ चलता है आप सोचो, या तो पास्ट की बातों में या तो भविष्य की फिक्र में। एकाग्र होकर के प्रेजेंट में रहे बहुत ही कम, मैं ठीक कह रही हूं राइट? तो बाबा क्या सिखाते हैं कि पास्ट को भी फिनिश करो, जो कुछ पास्ट से मुझे सीखना है वो सीख करके आगे बढ़ो, और भविष्य के लिए आज यदि मैंने अपने मन वचन कर्म पर ध्यान दिया तो मैंने भविष्य का बीज डाला, मेरे संकल्प, मेरे वचन, मेरे कर्म, वो सब है बीज डालने का भविष्य के लिए। तो मुझे फिर भविष्य के लिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती, भविष्य के लिए कुछ डर नहीं, कुछ और संकल्प नहीं, भविष्य अपने आप ही ठीक होगा, क्योंकि आज के समय मैंने बीज करेक्ट डाले हैं। तो जब हम इस तरह से अपने मन और बुद्धि पर ध्यान रखेंगे, तो फिर योग के समय दोनों ही हमें साथ दे करके हमें कहाँ पहुंचाएंगे? पहले तो हम आत्मस्मृति में रहेंगे, फिर बाबा के साथ संबंध जोड़ेंगे, बाबा अपनी दृष्टि से, अपनी वृत्ति से हमें पार परमधाम का अनुभव करेंगे, और वहां पर आत्मा और परमात्मा का जब मेल होता और जब वो भावनाएं होती है बाबा के प्रति प्यार की, उसमें एक और बात मैं ऐड करेंगी, पर चिंतन छूटा, व्यर्थ संकल्प छूटे, पास्ट फ्यूचर का संकल्प फिनिश हो गए, बाकी और हमें बाबा को सदा थैंक्स देने का संकल्प रखना है। सवेरे से आप उठो और पहला संकल्प आए, बाबा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बहुत अच्छी जीवन दी है, दिन भर कदम कदम पर बाबा को थैंक्स देते चलो। क्यों? क्योंकि कदम कदम पर फिर भी हमारी आपकी जीवन बहुत आराम से चल रही है। जब हम लोगों की स्थिति को देखते हैं, कितना दुख, कितनी अशांति, कितना दर्द है संसार में, और हम अपने जीवन को देखते हैं, तो क्या दिल से बाबा को हम धन्यवाद नहीं करते? कदम कदम पर हम बाबा को थैंक्स देते रहे। आपने देखा होगा, कई यहाँ बैठे हैं जो खुद भी माँ बाप है, कई बच्चे भी थोड़े हैं, परंतु मोस्टली तो एडल्ट्स है। तो उसमें जब आपके बच्चे कोई बात का कदर करते हैं, तो आपके मन में क्या आता? हम और भी उन्हों को कुछ दे दें। और यदि आप कुछ बच्चों को दे रहे हैं, प्यार भी दे रहे हैं, सब कुछ पालना भी कर रहे हैं, परंतु आप देखते हैं कि बच्चों को उसकी वैल्यू नहीं है, इतना कदर नहीं है, तो आप ही सोचते हैं कि हाँ, मेरा फर्ज तो है, मुझे संभालना तो है, परंतु दिल से उनको और आगे हम देते रहे, थोड़ा संकल्प चलता। तो बाबा तो कुछ अपने लिए चाहता नहीं है, परंतु जब हम आभार मानते हैं, तो उसमें हमारे दिल में जो बाबा के प्रति प्यार होता है, और उस प्यार में और थैंक्स ग्रैटिट्यूड की स्थिति में कोई और नेगेटिव बात नहीं आ सकती। उस समय न क्रोध होता, उस समय न लोभ होता, उस समय न मोह होता। तो बहुत सिंपल बात, अपने मन को बहुत श्रेष्ठ स्वच्छ बना के रखने के लिए कदम कदम पर बाबा का आभार माने, तो वो प्यार सदा जागृत रहेगा। तो जब हम चाहते हैं कि योग अगिन हो, प्यार की अगिन हो, लगन की अगिन हो, वो सहज अपने आप ही आएंगी। तो कदम कदम पर आप बाबा का आभार मानते रहे, तो उसमें और ही बाबा की तरफ से आपको बहुत कुछ वरदान भी मिलते रहेंगे, प्यार भी मिलता रहेगा। तो बाबा जो हमें प्यार देता है, हम उसमें जो स्वीकार करते हैं, अपने को भरपूर करते हैं उस प्यार से, तो उस प्यार से हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आ जाता। कई बातों में आपने देखा होगा कि बच्चे समझाने से भी नहीं समझते, परंतु जब बच्चों को बहुत प्यार मिलता, तो उस घड़ी उनको संकल्प आता कि जैसे माँ बाप कह रहे हैं, मुझे करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना हमें प्यार दिया है, तो हमें प्यार का रिटर्न देना है। तो बाबा के लिए भी, बाबा जानते हैं कि जितना बच्चों को प्यार मिलेगा, उतना बच्चों के जीवन में परिवर्तन आता रहेगा। तो इस तरह से जब आप अभ्यास करेंगे, तो दिन भर बाबा को थैंक्स देते रहे, तो वो प्यार की फीलिंग बहुत जबरदस्त आपके पास रहेंगी। फिर आप योग में बैठेंगे, तो बाबा आपके बुद्धि को अपनी तरफ सहज खींच लेगा, और आप परम धाम का अवश्य ही अनुभव करेंगे, जिसमें बाप और मैं। उस स्थिति में हम कहेंगे कि योग की ज्वाला, योग की अगिन, और उस स्थिति में जो और कुछ भी है आत्मा के अंदर, वो बिल्कुल निकल ही जाता, छूट जाता, और आत्मा शुद्ध पवित्र बन जाती। और उस शुद्ध पवित्र आत्मा का जब फिर से यहाँ सृष्टि पर आना होता, क्योंकि ये तो हम बुद्धि योग की यात्रा करते, शरीर के हिसाब से तो यहाँ बैठे हैं, परंतु वो यात्रा करने के बाद हम वापस इस साकार दुनिया का अनुभव करते, तो आप सोचो कि जिसने परमात्मा का प्यार का अनुभव किया, शांति दाता से अपने में शांति की शक्ति भर ली, वो आनंद का अनुभव किया, तो उसका यहाँ पर सृष्टि पर किस तरह से व्यवहार चलेगा? तो एलॉय निकल गई, आत्मा पवित्र बन गई, पावन बन गई, तो प्रैक्टिकल उसका हम स्वरूप देखते हैं। जो भी यहाँ बैठे हैं, मैं समझती हूँ कईयों ने दादियों का अनुभव अवश्य किया होगा। कुछ कुछ होंगे जिन्होंने बाद में ज्ञान लिया है, कईयों ने कोविड के समय ज्ञान लिया तो जूम पर ऑनलाइन ज्ञान लिया, परंतु मेजॉरिटी होंगे मैं समझती जिन्होंने दादियों का अनुभव किया। तो आप जब उनसे मिलते थे आप क्या कहते थे? दादी जी के लिए सब कहेंगे कि वो बिल्कुल प्यार की मूर्ति, प्रेम की मूर्ति। दादी जानकी के लिए सब कहेंगे कि वो सदा हर्षित और साथ साथ बिल्कुल ज्ञान का गंगा, कॉन्स्टेंटली हर समय दादी ज्ञान की वर्षा करती ही रहती थी, गॉडेस ऑफ विजडम। दादी गुलजार से मिलते थे तो बिल्कुल आत्मा शांत शीतल बन जाती थी। बाबा दादी को कहते थे निरसंकल्प देवता, तो वैसे भी उसका ज्यादा समय साइलेंस में ही रहना होता था, परंतु जब किसी के साथ ही व्यवहार में आती थी तो दादी के नैनों से, चेहरे से बिल्कुल ऐसे ही वाइब्रेशंस आते थे जो हर आत्मा वो शांत हो जाए। तो हम लोगों ने प्रैक्टिकल ये सब देखे हैं कि योग का प्रूफ किस तरह से उन्होंने जीवन में दिखाया। परंतु मुख्य बात अपने बुद्धि को एकाग्र करने के लिए आत्म स्मृति। बाबा का आप देखो कि कितने बारी एक ही मुरली में बाबा कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो। ये निश्चय की बात है क्योंकि अब तक तो हमने अपने को ये समझा, तो फिर ये समझने से सब यहाँ की बातें, यहाँ के लोग, यहाँ के संबंध वही खींचते रहेंगे। हमने निश्चय किया कि मैं आत्मा हूँ, मैं उसकी संतान हूँ, मेरा घर परम धाम है। उस निश्चय से दिन भर और जो भी करना है भले करो, परंतु एकाग्रता के लिए एकांत प्रिय, एक के अंत में जाने का प्यार हो, क्योंकि इस संसार में एकांत की जगह तो नहीं मिल सकती। कोई समझते हैं हम दूर चले जाएंगे तो हमें एकांत मिलेगा, फिर वहां जाते हैं तो और टूरिस्ट होते हैं तो किसका टेलीफोन, किसका रेडियो, कुछ न कुछ आवाज आता ही रहेगा। है ही संसार में नॉइज पोल्यूशन, और पोल्यूशन तो छोड़ो, आवाज का भी बहुत सारा पोल्यूशन है। परंतु एकांत, एक के अंत में जाना, एकांत प्रिय। हम चाहते हैं कि हम उस एक के अंत में जाएं। तो जब हम अंतर्मुखी होते हैं, अंदर जाने का हम अभ्यास करते हैं, तो वो जागृति आती है। एकांत में हम एक के अंत में जाएं। एकांत है अंदर, एकांत बाहर नहीं, एक के अंत में हम जाएं। तो फिर जितना आप अंदर जाएंगे उतना आपको पता चलेगा कि वो एक कौन है, और एक के साथ संबंध जोड़ने से किस प्रकार की प्राप्ति हो सकती। तो ऑटोमेटिकली जहाँ प्राप्ति होती है वहाँ बुद्धि अपने आप चली जाती है, जहाँ प्यार होता है वहाँ मन और सब तरफ से हट करके उसके साथ जुट जाता। हर एक को लौकिक हिसाब से तो अनुभव है, जब किसके साथ मीठी मीठी प्यार की बातें करते हैं तो संसार भूला हुआ होता है उस समय, बस उसी आनंद में होते हैं। तो बाबा के साथ जितना हमारा प्यार, उस बिंदु के साथ प्यार तब जबकि मैं आत्मा बिंदु, शरीर में यहाँ के संबंध, आत्म स्मृति में बाबा के साथ संबंध, तो उस शिव बाबा की याद में जितना जितना बुद्धि और उसको पहचानती जाती है यही ख्याल आता कि और भी हम अच्छी तरह से बाबा को जानें। आपने देखा होगा जिसकी बातें अच्छी लगती है तो उस व्यक्ति के साथ भी प्यार होता, वैसे ही नहीं प्यार होता, उनकी बातें अच्छी लगती। तो हमें बाबा की कौन सी बातें अच्छी लगती? जो बाबा ने हमें मुरली में सुनाई है, मुरली को याद करो, बुद्धि में मुरली की बातें सुनो। जैसे आज बाबा बता रहे थे कि किस तरह से बिल्कुल कमल फूल समान हमारी जीवन हो, और फिर साथ साथ बाबा हमारे बुद्धि से खेल भी करते थे। न्यू मैन कौन है? रमा बाबा है, श्री कृष्ण है। बाबा अच्छी तरह से दो तीन बारी प्रश्न पूछ करके अलग अलग जवाब दे करके फिर फाइनल बताया कि बाबा पुराने में आते हैं, उसको नया बनाते हैं, और वो नया है श्री कृष्ण। तो कहने का मतलब कि बुद्धि में ज्ञान का स्मरण दिन भर चलता रहे तो फिर बुद्धि निश्चय भी बढ़े, प्यार भी बढ़े, और फिर साथ साथ संबंध की समीपता इतनी जो बाबा के साथ वो संबंध ऐसे जो कोई भी कारण से उसमें कुछ बीच में ना आए। और जब ऐसे प्यार का संबंध है, बुद्धि एकाग्र है, बुद्धि को और कहाँ जाने का कुछ ख्याल ही नहीं होगा, मन भी उसी लगन में मगन है, तो मन बुद्धि दोनों ही हमारी एकाग्र, तो उसमें जो अग्न आती उस अग्न में बिल्कुल आत्मा शुद्ध पावन बन करके वो लाइट और माइट विश्व को हम दे सकते। आज आप सोचो कि विश्व में इतना अंधकार है, कई बार बाबा मुरली में कहते क्या आपको सुनाई नहीं देता है भक्तों का आवाज? तो भक्तों का आवाज तो एक बात है, परंतु दूसरी बात है जो लोग इतना दुखी होकर के बिल्कुल हैरान हो रहे हैं भिन्न भिन्न रीति से, उन आत्माओं को किस तरह से शांति मिले। तो हम जब ज्वालामुखी योग पर ध्यान देंगे, बुद्धि को अच्छी तरह से एकाग्र करके रखेंगे, तो फिर वो जो लाइट और माइंड और शांति होंगी वो सब तरफ फैलती रहेंगी। आपने ये भी देखा है, एक व्यक्ति योग करता उससे खुद को तो अच्छी प्राप्ति होती और हाँ वो किरणें फैलती है, 5 लोग 10 योग, 1,000 लोग, 15,000 लोग सब बुद्धि में बाबा और कुछ भी नहीं याद रखे, बुद्धि को बिल्कुल एकाग्र करे, तो उसमें कितनी एनर्जी, बाबा की कितनी शक्ति विश्व में फैल सकती। तो जो आत्माएं आज बहुत दुखी है, बहुत हैरान है, उनको भगवान का कुछ थोड़ा सा भी लाइट और माइट और शांति का अनुभव होगा। आपने जैसे कि उनको रास्ता दिखाया कि किस तरह से बाबा से कुछ वो ले सके, वो ढूंढने लगेंगे ये लाइट माइट कहाँ से आ रही है, वो बाबा उनको अवश्य ही रास्ता दिखाएंगा। तो यदि हम जो समय मधुबन में है और मधुबन के अनुभव के बाद वो आप अपना अनुभव साथ लेके जाएंगे, कहते हैं कि 3 दिन कोई भी बात का अभ्यास करो तो वो भी एक आदत बन जाती। बस 3 दिन, 3 दिन आप योग का अभ्यास ऐसे करो जिसमें बिल्कुल लाइट माइट फैल सके, तो फिर वो आप अपना अनुभव साथ लेके जाएंगे। तो कहाँ पर भी आप होंगे तो आप अपने एकांत को क्रिएट कर सकते हैं, आप अपनी स्थिति को ऐसे ऊंचा बना सकते जो बिल्कुल एकाग्र और ज्वाला योग का अनुभव बाबा आपको अवश्य कराएंगे। अभी आपका नेक्स्ट सेशन भी शुरू होने वाला है, परंतु इस सेशन की समाप्ति में हम थोड़ा उस योग के अगिन का अनुभव करें। ओम शांति।